अब आगे। तब नानी माँ ने सबको बुलाकर कहा, आप बच्चे के बीच में हम जाकर क्या करेंगे, आप लोग जाइए और आकर बताइएगा। तभी आस्था ने नानी माँ का हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा, नहीं 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 नानी माँ, हम आपके बिना कैसे जा सकते हैं, प्लीज आप भी चलिए ना। वहीं अरमान घूर कर आस्था को देखने लगा था, क्योंकि नानी माँ उसे शुरू से ही कबाब में हड्डी लगाती थी, क्योंकि आस्था हमेशा नानी माँ के साथ ही रहती थी और अरमान चाहता था कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे और उसके बारे में ही बातें करे, उसका ही नाम बार बार ले। वो एक तरह से अरमान नानी माँ को अपना दुश्मन समझता था, जो आस्था और उसके बीच में थी। अब जैसे ही आस्था ने नानी माँ को चलने के लिए आग्रह किया, नानी माँ ने अनायास अरमान की ओर देखा, जो घूर कर नानी माँ को देख रहा था। नानी माँ थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी और सोचने लगी, ये दामाद जी तो हमें इस तरह से घूर रहे हैं जैसे कि हम कोई लड़का हों और उनकी बीवी को हम भगा कर ले जाएंगे। हूँ, तभी नानी माँ अपने आप पर थोड़ा संयम रखते हुए बोली, अरे बेटा, हम बूढ़ी औरतें तुम लोगों के साथ जाकर क्या करेंगी, तुम लोग जाओ ना, इन्जॉय करो, और हाँ, पीछे से घर पर भी तो देखने के लिए कोई चाहिए ना, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसा बोलकर नानी माँ ने बड़े हक से उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी। वहीं आहान की आंखें नम हो रही थीं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो अरमान के साथ ही रहा था और उसके घर में कोई महिला नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से नानी माँ ने हक से ये कहा था कि वो घर का ध्यान रखेंगी, तुम लोग जाओ मौज मस्ती करके आओ, आहान को बड़ी ही अच्छी फीलिंग आई थी। अचानक उसने आगे बढ़कर नानी माँ को गले से लगा लिया था। अब आहान को इस तरह से इमोशनल देखकर रौनक हैरान थी और सोचने लगी, क्या बच्चों जैसा इसका दिल है, ये इतना भी बुरा नहीं जितना वो उसे समझ रही थी। क्योंकि रौनक को आहान शुरू से ही एक नंबर का रईस और बिगड़े हुए अमीरजादा लगा था, लेकिन अब जैसे जैसे आहान के रूप उसके सामने खुलकर आ रहे थे, तब से उसने आहान को लेकर अपनी सोच बदल दी थी। वेल, तभी अरमान की आवाज़ आई, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, ये बोलकर अरमान ने आस्था की ओर देखा। तब आस्था भी चुपचाप जाकर अरमान के बगल में खड़ी हो गई थी। तभी अचानक मारिया वहाँ आई, मारिया जो उस वक्त ऑफिस में ही रह गई थी और वो घर नहीं आ पाई थी, क्योंकि अरमान ने कुछ इम्पॉर्टेंट काम मारिया को दिए थे। क्योंकि मारिया को फॉरेनर मीटिंग्स की सारी डिटेल्स अच्छे से पता होती थी कि किस तरह से फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करके सब मीटिंग से वो प्रोजेक्ट हासिल करे, इसीलिए मारिया उनमें बिजी थी, इसीलिए वो उनके साथ वापस नहीं आई थी। अब जैसे ही मारिया वहाँ आई, सब लोग मारिया की ओर देखने लगे थे और तब ध्रुव मारिया की ओर देखकर बोला, मारिया दीदी, अगर आप आ गई हैं तो आप भी तैयार हो जाइए, हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं। तब मारिया तुरंत वहाँ जाकर एकदम सपाट लहजे के साथ अरमान के सामने खड़ी हो गई थी। वो सर्द आवाज़ में बोली, किंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब जैसे ही मारिया ने ये कहा, सभी लोग हैरानी से मारिया को देखने लगे, क्योंकि एक तो मारिया बहुत कम बोलती थी और सब लोग अच्छी तरह से जानते थे, अगर मारिया कुछ बात करने के लिए कह रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, इसीलिए अरमान ने मारिया को स्टडी रूम में आने का इशारा किया था। वहीं सबके सब परेशान हो गए थे, क्योंकि सबका मूड एकदम चिल आउट था और सबके सब बाहर घूमकर थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहते थे, लेकिन अब मारिया के आने पर सब हैरान हो गए। वहीं टाइगर मारिया के साथ साथ स्टडी रूम में चला गया था और साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान भी स्टडी रूम में जमा थे, क्योंकि अगर मारिया ने बोला है कि कुछ बात करनी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात ही थी। अब जैसे ही सबके सब वहाँ गए, अरमान मारिया की ओर गौर से देखने लगा और ऑर्डर देते हुए बोला, बोलो मारिया, क्या बात है। तब मारिया ने कहना शुरू कर दिया, एक प्रॉब्लम हो गई है किंग। अब मारिया के मुंह से प्रॉब्लम सुनकर सब चौंक गए थे, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मारिया खुद इतनी केपेबल थी कि आराम से सब कुछ हैंडल कर लिया करती थी, चाहे किसी की जान लेना हो, कोई प्रोजेक्ट हासिल करना हो, या किसी को धमकी देना हो, या कुछ भी करना हो, मारिया आसानी से वो काम कर लिया करती थी। लेकिन अब जब मारिया ने ये बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब अरमान उसकी ओर देखने लगा था। तब टाइगर पूछता है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तब मारिया बताती है, वो अबीर सिंह राठौड़ ने पूरे अंडरवर्ल्ड में अपने आप को किंग घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा चुका है। अबीर सिंह राठौड़ ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड का नया किंग घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने किंग के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोगों की बेरहमी से जान ले ली है। क्या क्या क्या, जैसे ही उन सब ने ये सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। अंडरवर्ल्ड का किंग बनना ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब साफ था कि पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड अबीर सिंह राठौड़ के कदमों में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, किंग तो सिर्फ डेविल किंग यानी अरमान सिंघानिया था, तो इस तरह से अबीर सिंह राठौड़ खुद को अंडरवर्ल्ड का किंग कैसे घोषित कर सकता था।
क्योंकि मारिया अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी तो सबसे पहले उसे खबर मिल चुकी थी और वो सीधा दौड़कर अरमान को बताने के लिए आई थी। और अब बात यहाँ तक पहुंची थी कि अगर अरमान सिंघानिया अबीर सिंह राठौड़ की अपने हाथों से जान ले लेता है तो वो अंडरवर्ल्ड का किंग रह पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। लेकिन अरमान सिंघानिया अपने वादे से बंधा हुआ था। अरमान ने अबीर सिंह राठौड़ के पिता को वादा किया था कि वो उसके बेटे की जान कभी भी नहीं लेगा, और अरमान सिंघानिया अपनी जान दे सकता था लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। अब अरमान थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने बचपन से ही डिसीजन लिया था कि वो हर तरफ लोगों पर राज करेगा, क्योंकि उसने जिस तरह से अपना बचपन जिया था, जिस तरह से उसने गुलामी देखी थी, जिस तरह से उसने पैसों की किल्लत देखी थी, तो इस तरह से उसने डिसीजन लिया था कि उसके जितना पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन अब इस तरह से अंडरवर्ल्ड की कुर्सी चले जाने के बाद अरमान की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे वाकई बहुत बड़ा धक्का लगा था और वो कोल्डली बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अबीर सिंह राठौड़ ने अंडरवर्ल्ड के 5 खास लोगों की जान लेकर खुद को किंग घोषित किया था, और जितने भी लोग अरमान के साइड थे उन सबका उसने मर्डर कर दिया था। उस वक्त अबीर सिंह राठौड़ बड़ा ही वहशी लग रहा था, क्योंकि अबीर राठौड़ ने डिसीजन लिया था कि वो अरमान सिंघानिया से सब कुछ छीन लेगा। इस बात के बारे में किसी को दूर दूर तक एहसास नहीं था कि अबीर सिंह राठौड़ ने ये सब काम अकेले नहीं किया था, बल्कि अमरेश रायचंद के साथ मिलकर किया था। फ्लैशबैक, जब अरमान सिंघानिया ने अबीर सिंह राठौड़ को धक्के देकर सिंघानिया मेंशन से निकाला था, ठीक उसी वक्त अमरेश से उसकी मुलाकात हुई थी। अमरेश रायचंद के कुछ आदमी मेंशन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि अमरेश रायचंद को इस बात का डर था कि कहीं अरमान सिंघानिया उसके बेटे को कोई हानि ना पहुंचा पाए। इसीलिए अरमान सिंघानिया पर नजर रखने के लिए उसने अपने आदमियों को भेज दिया था। लेकिन जब उसके आदमी ने उसे ये बताया कि अबीर सिंह राठौड़ को इस तरह से अरमान सिंघानिया ने अपने मेंशन से बाहर निकाला है, तो अमरेश रायचंद सीधा अबीर सिंह राठौड़ से मिलने जा पहुंचा था, और वहां जाकर उसे बात के बारे में पता चल चुका था कि आस्था अबीर सिंह राठौड़ की कमजोरी बन चुकी है। अरमान की बीवी उसी का फायदा उठाते हुए उसने उसे अंडरवर्ल्ड का रास्ता दिखाया था कि सबसे पहले अगर तुम्हें अरमान सिंघानिया को हराना है तो उसकी ताकत को खत्म करना होगा, और उसकी सबसे बड़ी ताकत अंडरवर्ल्ड से है, तो अगर तुम अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाते हैं तो अरमान सिंघानिया को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
इतना कहकर अमरेश रायचंद ने अबीर सिंह राठौर का अच्छे से ब्रेन वॉश किया था। अबीर के सर पर तो वैसे ही आस्था को अपना बनाने का भूत सवार था। उसने तो सोच लिया था कि वो ना केवल अरमान से आस्था को छीन लेगा, बल्कि अपनी जमीन को भी अरमान से छीन लेगा, जो अरमान ने उसके पिता को मजबूर करके हासिल किया था। अबीर सिंह राठौर को पहली बार मोहब्बत हुई थी, और वो अपनी मोहब्बत हर हाल में हासिल करके रहेगा। इसके लिए ना वो कोई सही देख रहा था, ना गलत देख रहा था। जो कोई भी रास्ता उसे आस्था के करीब कर रहा था, वो उस रास्ते पर चल रहा था। वहीं अरमान ने जैसे ही ये सब कुछ सुना, उसके चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन शातिर मुस्कुराहट थी। अरमान को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर उन चारों का रंग उड़ गया था। वो समझ चुके थे कि अरमान सिंघानिया ना जाने अब कितनी लाशों का ढेर लगाने वाला है। अरमान सिंघानिया पहले भी डेविल किंग कितने ही सारी लाशों का ढेर लगाकर बना था, और शायद अब एक बार फिर से अरमान का डेविल रूप सबको देखने को मिलेगा। तभी अरमान ने अपने शब्दों में आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर और मारिया को कुछ बताना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर आस्था, रश्मि, राधिका, रौनक, जो कि बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, वो सब उदास हो गई थी, क्योंकि वो सब डेस्परेटली बाहर जाकर घूमना चाहती थीं। क्योंकि रौनक तो जब से सिंघानिया मेंशन में आई थी तब से उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। कहाँ तो रौनक हमेशा अपने बुलेट उठाती थी और सड़कों पर सैर करने के लिए निकल जाया करती थी। वहीं रश्मि का भी अब बाहर निकलना छूट चुका था और शादियों के फंक्शन में बिजी हो गई थी, लेकिन अब उन सबका वाकई बाहर जाने का दिल कर रहा था। और राधिका तो लंबे समय से कोमा में थी, तो वो भी बाहर जाने की एक्साइटेड उसमें कुछ ज्यादा आ गई थी। तभी आस्था बोलती है, लगता है इन लोगों का बाहर जाने का इरादा बदल चुका है। जरूर इनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई होगी, लेकिन हम लोग तो जा सकते हैं ना? और वैसे भी रौनक को बाइक चलाना आती है, रश्मि दीदी को स्कूटी आती है, तो क्यों ना हम लोग एक राउंड लगाकर आ जाते हैं। आते टाइम आइसक्रीम खा लेंगे, वैसे भी बड़े दिनों से मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाई है, और वैसे भी मैं अब तैयार हो गई हूँ, मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं अब चेंज करने का। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, रश्मि और साथ साथ राधिका को भी आइडिया बुरा नहीं लगा था, और वैसे भी वो चारों मैच्योर थी तो आसानी से बाहर जा सकती थी, तो मसला क्या था? तभी उन्होंने दादाजी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। दादाजी, दादाजी, मुझे लगता है कि उन सबको कुछ काम याद आ गया है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं जा पाएंगे, तो इतने में वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इतने हम यहीं पास में जाकर आइसक्रीम खाकर आ जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने दादाजी से परमिशन ली, दादाजी ने बारी बारी से उन सबके मासूम से चेहरे को देखा और उसके बाद बोले, अच्छा अच्छा ठीक है,
आप लोग जा सकती हैं, लेकिन उनकी मीटिंग खत्म होने से पहले पहले आ जाना, वरना शायद उन्हें अच्छा न लगे। अब जैसे ही दादाजी ने परमिशन दी, उन सब ने खुशी होकर हल्ला काटकर दादाजी को गले से लगा लिया था। और जल्दी ही रौनक ने अपने स्टाइल में अपनी बाइक बाहर निकाली और उसने राधिका को अपने साथ बिठाया था। वहीं रश्मि ने स्कूटी निकाली थी और आस्था उसके साथ बैठी थी। और जल्दी ही वो लोग बिना उन सब यानी अपने अपने पार्टनर को बताए सीधा बाहर निकल गई थीं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो तो लोग अब तक शायद मीटिंग में बिजी हो गए हैं, तो शायद अब उन्हें घूमने ना ले जाएं। लेकिन उस वक्त उनका मन घूमने का था, ऊपर से वो तैयार हो गई थीं, तो इसीलिए वो बिना बताए चली गई थीं। वहीं अरमान सिंघानिया कितनी देर तक मीटिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद बोलता है, एक काम करो, बाकी सब उन सबको जाकर मना कर दो कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कल जाएंगे जहां जाएंगे, क्योंकि अरमान का प्लान आज कहीं और जाने का था। अरमान की बात सुनकर टाइगर तुरंत हॉल में आता है, लेकिन हॉल में आकर जब उसे दादाजी से इस बात के बारे में पता चला कि वो सब बाहर गई हैं, टाइगर के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि पहले ही आस्था की सिक्योरिटी में चूक हो गई थी और अबीर सिंह राठौर आस्था की जिंदगी में आ गया था। लेकिन अब इस तरह की चूक अगर हो जाती है तो अरमान सिंघानिया शायद किसी को जिंदा न छोड़े। टाइगर जल्दी ही अरमान के सामने मौजूद था और बोलता है, किंग, वो क्वीन और बाकी सब चली गई हैं। अब जैसे ही टाइगर ने ये कहा, अरमान की तो आंखों में खून उतर आया था और वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन कहाँ चला गया है? तब टाइगर ने साफ साफ बता दिया था कि क्वीन, रश्मि जी, राधिका जी और साथ ही साथ रौनक के साथ बाहर चली गई हैं। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे और उसने अपनी दो उंगली उठाकर अपने सर पर टैप करना शुरू कर दिया था। अरमान का मूड थोड़ी देर पहले कुछ और था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। तभी अरमान ने बेहद कोल्ड वॉइस में टाइगर से कहा, गाड़ी निकालो। वहीं आकाश, सुमित, आहान, ध्रुव, बाकी सब काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने भी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा हुआ था।